Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो ये अग्नि प्रतिष्ठा है, ये आधार है, किसी भी वस्तु को जब आपको मिटाना है तो आप देखिए उसको किस में जलाओगे। कोई कचरा है, कोई गंदगी है, कुछ भी है तो कहां, अग्नि में डाल दो, अग्नि में समाहित हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि उनका आधार है, अग्नि ग्रहण कर लेती है उसको। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण लोकों की जो प्रतिष्ठा है ये अग्नि है, और अनंत लोकों का आधार ये प्रतिष्ठा अग्नि। अब इसकी जो उपासना करनी होती है कहां करनी है, अध्यात्म और अधिभूत अधिदेव तीनों के रूप में की जाएगी। इस अग्नि की ही उपासना, सूर्य उपासना की जाती है, ये अग्नि की उपासना है। गायत्री मंत्र के द्वारा आप उपासना करते हो, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, अश्विता देव का जो भर्ग है, तेज है, उसका आप ध्यान करते हैं, ये अग्नि का ही तो रूप है। तो सूर्य आदि के रूप में अधिदेवत जो रूप है उसकी अग्नि से उपासना की जा रही है, अग्नि ही एकमात्र उसका माध्यम है, और इस उपासना का फल ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। ऐसे ही बाह्य अग्नि में अनुष्ठान जब आप करते हैं, उपासना और कर्म यहां पर दोनों का समुच्चय है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीन साधक के लिए साधन माने गए, परंतु याद रखिए कर्म और उपासना दो तो साथ साथ की जा सकती है, लेकिन कर्म उपासना के साथ ज्ञान का मेल नहीं हो सकता। ज्ञान स्वतंत्र है, कर्म और उपासना में करने वाले साधक का में कर्तापन होता है, कर्तृत्व उसके अंदर है, और ज्ञान में कर्तृत्व की ही निवृत्ति कराई जाती है। इसलिए ज्ञान और इधर कर्म और उपासना ये एक साथ नहीं हो सकते, कर्म और उपासना हो सकेंगे लेकिन ज्ञान के साथ नहीं, दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है, पर कर्म और उपासना का समुच्चय हो सकता है। तीन को दो ग्रुप में कर लीजिए, एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ कर्म और उपासना है। कर्म और उपासना दोनों साथ साथ रह सकते हैं, पर ज्ञान और कर्म उपासना साथ नहीं रह सकते, ज्ञान अलग होगा। यहां पर अग्नि विद्या के द्वारा कर्म और उपासना को एक साथ करने की बात कही जा रही है, यही कारण है कि तीसरे वरदान के बाद सिर्फ ज्ञान का वर्णन आएगा, स्वतंत्र अलग से वर्णन आएगा। कर्म और उपासना एक साथ की जाएगी। अब सूर्य नारायण भगवान का जब आप ध्यान करते हैं, सविता देव का ध्यान करते हैं, मंत्र उच्चारण किया, आंख बंद किया और भर्ग का ध्यान किया, ये मानसिक पूजा है, मानसिक चिंतन है, ये उसकी उपासना है। उपासना माने जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने विचार से, अपने भाव से हम बिल्कुल उसके नजदीक जाकर के बैठ जाएं, बिल्कुल समीप बैठ जाएं, उसके सानिध्य को प्राप्त कर लें भावना से। और दूसरा होता है कर्म के द्वारा उसके नजदीक पहुंचना। जो यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं उन यज्ञ कर्मों में भी आप देखिए अग्नि की ही प्रधानता होती है। जब भी हवनात्मक कर्म होगा तो बिना अग्नि के कहीं हवन करते हुए देखा नहीं गया है। हवनात्मक जितनी भी क्रिया होगी सब की सब उस लोगों की आधारभूता जो अग्नि है उसके अंदर ही होगी। तो ये भौतिक रूप से अग्नि के द्वारा जो भौतिक अग्नि है उस भौतिक अग्नि में भूत अग्नि के अंदर उस देव की आराधना की जा रही है। सूर्य नारायण में चिंतन के द्वारा उपासना से देव की आराधना की जा रही है, और उसको अध्यात्म रूप से भी बताया निहितम गुहायाम। वो अग्नि केवल सूर्य नारायण में ही हो, वो अग्नि केवल हवन कुंड में ही हो, ऐसी बात नहीं है। वो ही अग्नि आपका अध्यात्म बनकर के भी बैठी हुई है, जिसको आप अनुभव करते हैं। देखो हमारी जो आंख देखती है, आंख देखने का काम तब करती है जब सूर्य नारायण इस आंख का अनुग्राहक बनकर के भीतर में बैठता है, अध्यात्म बनता है। सूर्य नारायण अनुग्राहक देव माना गया है नेत्र का, नहीं तो सूर्य नारायण के अनुग्रह के बिना नेत्र देख नहीं सकता है। हमारी वाणी जो बोलती है, ये वाणी अपने आप नहीं बोल रही है, इस वाणी को बुलाने का जो काम कर रही है वो विशेष अग्नि है, जो बाह्य अग्नि है, समष्टि अग्नि है, लोगों की आदि भूता अग्नि है, वही अग्नि हमारे भीतर में बैठ करके जो हमारी वाक ज्योति है उसको उत्पन्न करनी कर रही है। वाणी की अनुग्राहक देवता है ये अग्नि। शरीर में जितनी भी इंद्रियां काम करती है संपूर्ण इंद्रियों के अनुग्राहक देवता होते हैं, और वो अनुग्राहक देवताओं के अनुग्रह से ही देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि संपूर्ण क्रियाएं होती है। और इसको उपनिषदों में बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जब मरणासन्न व्यक्ति होता है ना, शरीर छोड़ता है, उसकी प्रक्रिया पर आप ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगी कि देवताओं का अनुग्रह से ही सारा व्यवहार चलता है। वांग मनसी संपद्यते मन प्राण प्राणस तेजसी तेज प्रस्याम देवतायाम, ऐसे प्राण त्यागने के समय की प्रक्रिया शास्त्रों में बताई है। जब किसी का शरीर से प्राण निकलना होता है तो सबसे पहले कर्म इंद्रियां अपना कार्य छोड़ देती है, इसलिए न बोलना होता है, न चलना होता है, न लेना देना होता है, सबसे पहले स्थूल जो कर्म इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि ज्ञान इंद्रियां भी स्थिल हो जाती है, उस स्थिति में आंख खुली है, कान झुका त्यों खुला पड़ा है, लेकिन आंख खुली होने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान है मगर सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी लोग कहते हैं अभी गया तो नहीं है, भले ही आपकी सुन नहीं रहा है, आपका जवाब नहीं दे रहा है, मुंह में कुछ डाला तो अंदर जा नहीं रहा है, आंख के पास जाकर के हाथ को हिलाया तो निमेश उन्मेश नहीं हो रहा है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आपने हाथ लगा करके देखा मंद मंद नाड़ी चल रही है, अभी प्राण है, सीने पर हाथ डाला तो देखा कि गर्म है, फिर भी कहते अभी है। अरे जब शरीर के भीतर वो है तो देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, थोड़ा कुछ ग्रहण भी कर लेना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए कि जब उसका प्राणांत होना है उस अवस्था में सूर्य नारायण ने नेत्र में जो अनुग्रह कर रखा था अपने अनुग्रह को खींच लिया, आंख खुली है मगर देख नहीं पा रहा है, दिग देवता ने अपना अनुग्रह खींचा, कान ज्यों का त्यों है लेकिन श्रोत्र इंद्रिय सुन नहीं पा रही है, क्योंकि जाएगा तो तब ना, जब प्राणांत होगा निकलेगा तब ये ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां प्राण सब मिलकर के जाएंगे उसके साथ में, पर अभी गया नहीं है तो शरीर के भीतर नेत्र इंद्रिय भी पड़ी हुई है, शरीर के अंदर श्रोत्र इंद्रिय भी पड़ी हुई है, सारी की सारी इंद्रियां शरीर के अंदर है, ऐसी स्थिति में व्यवहार क्यों नहीं हो रहा? इसलिए व्यवहार नहीं हो रहा कि देवताओं ने अपना अनुग्रह खींच लिया है। ये बात इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि हमारे अध्यात्म रूप से जो अग्नि भीतर में बैठा हुआ है, अब सूर्य रूप से देखो वो अग्नि नेत्र के अंदर बैठ करके और दर्शन इंद्रिय को प्रेरित कर रहा है। अग्नि हमारी वाक इंद्रिय को प्रेरित करने के लिए वाणी के अधिष्ठाता बनकर के अध्यात्म रूप से भीतर में बैठी हुई है, तो जितना व्यवहार चल रहा है शरीर के भीतर वो सारा उस अग्नि के द्वारा ही चल रहा है। अब देखिए यहां पर जो उपासना बताई जा रही है, जिस उपासना से साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ये बात आपने समझ ली कि अग्नि का तीन रूप है, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म रूप। अब उपासना जब की जाती है तो जो अध्यात्म अग्नि है उस अध्यात्म अग्नि विशिष्ट जो जीव है वो ये अनुभव करे कि मैं इस शरीर के अंदर जो अग्नि है, इतना मात्र ही नहीं, ये जो समष्टि लोकों की आधारभूता अधिदेवत अग्नि जो सबकी अधिभूत बनकर के और सब में अध्यात्म बनकर के बैठी हुई है, वो अग्नि मैं ही हूं। ऐसा ध्यान करे, ऐसा चिंतन करे, अधिभूत अग्नि में हवन करेगा और उपासना के रूप में ध्यान चिंतन करेगा, ये लोकों की आधारभूता जो प्रथम अग्नि है जिससे सारे लोग प्रकट हुए हैं, वो आधारभूता अग्नि मैं हूं, ऐसा चिंतन करे। सारे आधारभूता अग्नि मैं हूं, इससे क्या होगा कि व्यष्टि भाव से वो समष्टि भाव को प्राप्त होता है, एक प्रचिन्नता हट करके आपको एक बड़ी अच्छी बात मुझे ध्यान में आई। महाभारत काल की एक घटना आपको मालूम है, जब पांडवों को वनवास हुआ, अज्ञातवास में गए हैं, और उधर पीछे से कौरवों के पास में महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ जाते हैं। उन ऋषियों को देख करके दुर्योधन और उनके सहयोगियों ने विचार किया कि इन बाबाओं का चातुर्मास यहां करवाया जाए और इनसे भी अपना कोई न कोई स्वार्थ सिद्ध किया जाए। चातुर्मास के लिए उनसे आग्रह किया और दुर्वासा ऋषि ने हजारों शिष्यों के साथ में, 10,000 शिष्य थे उनके, और हस्तिनापुर में चातुर्मास किया। वहां चातुर्मास करने के बाद पूरे 4 महीने जब पूर्ण हुए, और इधर चातुर्मास काल में दुर्योधन और उनके सहयोगियों की एक सलाह हुई कि इनसे अपना कार्य सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, इनका चातुर्मास कार्तिक शुक्ला एकादशी को पूर्ण हो जाएगा, इसलिए कार्तिक शुक्ला एकादशी को ही इनको शाम को विदाई दे दी जाए। जो भेंट पूजा करनी है एक दिन पहले ही कर दी जाए, और फिर बोला जाए कि कल यहां से आप पधारेंगे तो महाराज सीधे गंगा किनारे, क्योंकि महात्मा लोग यहां से चलेंगे तो गंगा स्नान के लिए जाएंगे, और काम्यक वन में हमारे जो पांडव लोग रहते हैं उनका एड्रेस दे दिया जाए कि वहां पहुंचे, और यहां से चल करके जाते जाते उनको दिन के 3-4 बज जाएंगे, और वहां एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि युधिष्ठिर अतिथियों की सेवा करता है, लेकिन वहां तो उनके सामने बड़ी भारी समस्या थी। उसका निराकरण तो एक सूर्य की आराधना से हुआ है। धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्य आराधना बताई, और सूर्य देवता प्रकट होकर के एक पात्र देते हैं, जिस पात्र में जैसे भगोनी, इस प्रकार का कोई पात्र दिया, भगोनी में नहीं, गड़े जैसा, जिसका मुंह सकड़ा होता, क्या बोलते हैं उसको आप, हां गड़े जैसा, वो एक पात्र देते हैं, और उस पात्र को देकर के कहा कि इस पात्र में जो जिसको जितना भी चाहिए, जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन निकालेगी द्रौपदी। द्रौपदी निकालेगी स्नान आदि करके, और जितना भी भोजन चाहिए, जैसा भी भोजन चाहिए, किसी को शक्कर वाली खीर चाहिए, किसी को बिना शक्कर की खीर चाहिए, किसी को मिर्ची वाली सब्जी, किसी को बिना मिर्ची वाली सब्जी, किसी को अमुक मिठाई, किसी को पूड़ी, किसी को पराठा, किसी को रोटी, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, किसी को गर्म, किसी को ठंडा, किसी को नरम, किसी को कड़क, जैसा चाहिए सब इसके अंदर से मिलेगा। द्रौपदी निकाले और सबको भोजन करा दे, सब भोजन कर ले, उसके बाद स्वयं द्रौपदी भोजन कर ले, और वो भोजन कर लेगी, उसके बाद इस घड़े में कुछ नहीं मिलेगा उस दिन के लिए। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया चालू हो सकती है, परंतु एक समय ही तो भोजन करना होगा, और एक समय द्रौपदी खाने से पहले पहले जो चाहोगे, जितना चाहोगे मिल जाएगा। उनकी समस्या का समाधान तो इस तरह से हुआ था, पर शर्त यह थी कि द्रौपदी भोजन न करे तब तक मिलेगा। इन्होंने सोचा कि ये लोग जब जाएंगे तो 3-4 बज जाएंगे, वो तो 12-1 बजे खा पी करके विश्राम करते हैं, फिर सत्संग में लग जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जाएंगे तब तक तो उस बर्तन में कुछ मिलना नहीं, और जब अतिथि का सत्कार नहीं कर पाएंगे तो दुर्वासा कुछ न कुछ इनके मुंह से ऐसा निकलेगा कि इसकी मुख से निकलने वाली जो शब्द अग्नि है उसे जल करके भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उनका अनिष्ट हो जाए। दुष्ट का काम और क्या है? पर हित हानि लाभ जिन के रे, दूसरे की भलाई का नुकसान करना ही जिनके लिए लाभ है। दूसरे की भलाई न हो, दूसरे का अनिष्ट हो जाए, इसी में जो खुशी मानते हैं, अपना लाभ समझते हैं, यही योजना तैयार हुई। और सचमुच में दुर्वासा ऋषि चातुर्मास के बाद 10,000 शिष्यों को लेकर के जब काम्यक वन में जाते हैं तो देखा युधिष्ठिर आदि ने, ओहो आज तो संत पधार रहे हैं, लेकिन जैसे कोई टिड्डी दल उड़ करके आया हो। 10,000 अब आए, उनका स्वागत किया, बैठने को आसन आदि दिया, और पूछा महाराज कोई सेवा फरमाइए, आदेश करिए। दुर्वासा जी कहते हैं सवेरे से चले हुए हैं, कल एकादशी थी और भूख लगी है, जोर से कोई व्यवस्था करो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्नान हो गया? नहीं नहीं, आज तो स्नान भी नहीं कर पाए, सवेरे से चले आ रहे हैं, आप स्नान कर लीजिए। सबके सब स्नान करने के लिए नदी पर जाते हैं गंगा जी में, और पीछे से उन्होंने विचार किया कि अब क्या किया जाए। द्रौपदी भोजन कर चुकी है, बर्तन में कुछ मिलेगा नहीं, बड़ी मुसीबत है। और जो बैठ करके उन्होंने भगवान का कृष्ण का ध्यान किया, और जो ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, उधर भगवान भोजन में बैठने जा रहे थे, और उससे पहले जब पांडवों ने ध्यान करके प्रभु को बुला लिया, देखो चिंतन शक्ति संकल्प से पहुंच गई है ना, संकल्प शक्ति इतनी जबरदस्त होती है। ये आपके मोबाइल तो बाद में काम करते हैं, पहले संकल्प शक्ति काम करती है। बड़ा आश्चर्य है, कल की ही बात है, जेबी नगर में कई महात्मा आए हुए थे, गुजरात से हमारे एक संत आए हुए थे, हम बैठे थे और किसी संत की बात कर रहे थे, बिल्कुल उस संत की ही चर्चा हो रही थी कि बहुत अच्छे हैं, उनके सब कुछ विशेषताएं बातें चल ही रही थी। इतने में गुजरात वाले स्वामी जी का फोन बजा, फोन उठाया तो वो संत अमेरिका गए हुए, वहां से उनका फोन आया था। दो चार मिनट तो यही बात होती रही कि स्वामी जी आपकी बड़ी उम्र है, सब आपको याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। आप बताइए उस महात्मा को कैसे पता चल गया कि मुझे जेबी नगर में बैठ करके महात्मा याद कर रहे हैं? कोई टेलीफोन तो नहीं किया, कोई विचार बात ही नहीं थी, केवल उनको याद कर रहे थे, और यह संकल्प उनके भीतर में प्रकट हो गया, और उधर से उन्होंने फोन किया तब पता चला कि हमें ही याद कर रहे थे। संकल्प शक्ति बड़ा काम करती है। भगवान कृष्ण को याद किया भक्तों ने भीतर से तहे दिल से, तो भगवान दौड़े गए, भोजन छोड़ करके चले गए, और वहां जाते ही भगवान द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ खाने वाने का हो तो दे। द्रौपदी कहने लगी, नाथ जिस समस्या का समाधान के लिए हम आपको याद कर रहे थे, उस समस्या को आप स्वयं भी साथ में लेकर के आए, जो स्वयं भूखा है वो दूसरे की क्या भूख मिटाएगा। हमारी तो ये तो समस्या थी, 10,000 महात्मा स्नान कर रहे हैं, आने वाले हैं, क्या खिलाएंगे हमने, तो उनकी चिंता थी, आप स्वयं भी भूखे आए हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, और कुछ बात नहीं सुनना चाहता, मुझे जोर से भूख लगी, मैं तो पंक्ति में बैठने वाला था, तुमने याद कर लिया तो दौड़ा आया, कुछ है ही नहीं खाने को। नहीं नाथ, कुछ भी तो नहीं होता तो फिर आपको याद ही क्यों करते। बात तो सही है, याद तभी आती है जब कोई विपत्ति हो, कोई समस्या हो। भगवान कहते हैं, द्रौपदी मैंने सुना है कि सविता देव की कृपा से तुम्हें ऐसा पात्र प्राप्त हुआ है जिसमें हाथ डालो तो मनचाहा माल मिलता है। द्रौपदी कहने लगी, नाथ बात तो बिल्कुल सत्य है, मिलता है, लेकिन तभी तक जब तक कि मैं भोजन न कर लूं। भगवान कहने लगे, अरे कुछ तो बचा होगा तो सारा का सारा खा गई, क्या करूं नाथ, उसकी शर्त ही यही है, और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आपको विश्वास न हो तो ये पात्र संभालो, आप देख लो। भगवान ने पात्र हाथ में लिया और उसमें हाथ घुमाया तो देखा कि साग का पत्ता कहीं चिपका हुआ रह गया था। उस पत्ते को भगवान ने निकाला और भगवान ने मंत्र बोला, अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, ये बोला और उस पत्ते को सेवन कर गए। अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, इस पत्ते के द्वारा संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। और इस संकल्प से जो ही भगवान ने उस पत्ते का सेवन किया, गंगा जी में स्नान करते हुए 10,000 महात्माओं के पेट लेटर बॉक्स की तरह ठसाठस भर गए, किसी को भूख नहीं रह गई, तृप्ति हो गई, खाने की इच्छा नहीं रह गई। यह कैसे हो सकता है? एक संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए जब उपासना करते हैं तो उपासना का यह विधान होता है कि जो उपास्य है विराट रूप है, उस विराट का ध्यान करो। लेकिन किस रूप में? वो विराट जो मेरे भीतर में बैठा हुआ है, वो उस अग्नि को जो भीतर में है उसका ध्यान करो कि मैं इतना ही नहीं, ये मेरे भीतर की अग्नि इतनी ही नहीं, जो अग्नि केवल आंख को खोल रही है, जो अग्नि केवल वाणी को जागृत कर रही है, जो अग्नि केवल इंद्रियों को प्रेरित कर रही है, जो अग्नि केवल शरीर को स्फूर्ति दे रही है, ये अग्नि सिर्फ इतने ही नहीं है, ये अग्नि तो व्यापक अग्नि है, सर्वत्र अग्नि है। और वो जो व्यापक आदिभूत अग्नि है संसार की, सृष्टि की, स्थूलता की, उस आदिभूत अग्नि को मैं के रूप में देख रहा कि मैं इतना ही नहीं, वो सारी समग्र अग्नि मैं ही हूं। इस प्रकार जब व्यष्टि और समष्टि का एक एक करके साधक ध्यान करता है तो इस एक के ध्यान का ही ये फल है कि उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति माने अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। वो परिच्छिन्नता को छोड़ करके और एक समष्टि भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा कि ये अग्नि निहितम गुहायाम, जब आप ध्यान करोगे, आप चिंतन करोगे, तो व्यष्टि को समष्टि में ध्यान करोगे, क्यों जो समष्टि है वो व्यष्टि के रूप में भी वही है। तो सब जगह ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो उसका उपासना के लिए भीतर में ध्यान करते हुए समझो कि ये भीतर जो अग्नि है यही समष्टि रूप जगत की आदि भूता प्रतिष्ठा भूता अग्नि है। इस प्रकार से इसका ध्यान किया जाता है, और ऐसा ध्यान करके जो भौतिक अग्नि है उस भौतिक अग्नि में जब कर्म किया जाता है, आहुतियां दी जाती है, हवन किया जाता है, तो भी यही कि जो अध्यात्म अग्नि है वो अधिभूत है, वो अधिदेव भी है, उसी की एकता का भाव रखकर के अग्नि में आहुति दी जाती है। इसलिए फिर अग्नि में आहुति की विधि का उन्होंने वर्णन किया, लोकादिम अग्निम तमोवाच तस्मै या इष्ट का यावतिर यथावा सचापि त्वत् तत्प्रत्यवदत यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। फिर उसके बाद में हवन विधि का उन्होंने वर्णन किया है, हवन जब करते तो देखो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, हवन कुंड, हवन कुंड में कितने ईंट होनी चाहिए, कैसी ईंट होना चाहिए, उसका चयन कैसे होना चाहिए, या इष्ट का जो ईंट हो, यावती जितनी संख्या में हो, यथावा जिस प्रकार से उनका चयन किया जाए, वो सारी विधि यमराज ने उनको बताई। यहां उपनिषद में इतना ही वर्णन किया है, जो ईंट हो, जितने हो और जैसे हो, इतना ही वर्णन किया, आगे विस्तार में वर्णन किया ही नहीं। इसलिए कि इस उपनिषद का मुख्य ध्येय स्वर्ग दिलाना नहीं है, वहां से भी वैराग्य उत्पन्न करवाना है, परंतु फिर भी आपके मन में जिज्ञासा जरूर हो रही होगी, क्या या इष्ट का यावतिर्वा यथावा का क्या मतलब। तात्पर्य यहां पर ऐसा आता है कि ये देखो सारा का सारा व्यवहार उस अग्नि के अंदर ही हो रहा है, और उस अग्नि की उपासना हम शरीर में और समष्टि रूप में और समस्त काल में करते हैं, तो जो काल की गिनती होती है, समय की गिनती, वो सूर्य और चंद्रमा को लेकर के होती है, कहीं सूर्य राशि से वर्ष होता है तो कहीं पर चंद्र राशि में वर्ष गिना जाता है, गिनती सूर्य चंद्रमा को लेकर के होती है, वो भी अग्निभूत ही है। ये जो गिनती हो रही है काल गिनती, एक वर्ष माना जाता है 360 दिन का, तिथि से 360 दिन का एक वर्ष होता है, पर उसमें रात्रि भी आएगी कि नहीं, तो दिन ही दिन होंगे कि रात्रि भी होगी, कहना पड़ेगा कि 360 दिन है और 360 रात्रि है, दोनों को मिला देते हैं तो 360 प्लस 360 720 दिन और रात्रि हो जाते हैं एक वर्ष के अंतर्गत। अब जब वो यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ कुंड में जो ईंटें होती हैं वो 720 ईंट का कुंड बनाया जाता है, उसका चयन किया जाता है। उसे इष्टिका में यह भावना है कि एक वर्ष भर के संवत्सर के दिन और जो रात्रि है वो सब इसके अंदर समाहित है, सब इसके अंदर समाहित है। इस दृष्टि से 720 ईंटों का हवन कुंड, और ईंटें कैसी हो, साबुत ईंट हो, अखंडित ईंट हो, विधिवत उनका चयन हो, इस प्रकार का जो हवन है उस इष्टिका में भी यही भावना करना कि इसकी भी आदि भूता कारण अग्नि ही है, क्योंकि पृथ्वी कहां से आई, अग्नि जल और पृथ्वी, उसका भी आधारभूत अग्नि ही है। तो ये इष्टिकाएं जितनी है ये भी अग्नि रूप है, और इसमें प्रज्वलित होने वाली जो भीतर काष्ठ के अंदर से अग्नि है वो भी अग्नि ही है, और जो हवन किया जाएगा वो भी अग्नि रूप ही होगा, और वो अग्नि ही मेरा रूप है, उस अग्नि रूप ही मैं हूं। अग्नि हवन करने वाला भी कोई मृत नहीं करेगा, जीवित ही तो करेगा जिसके भीतर अग्नि काम कर रही है। तो सबको एक के समझ करके और फिर उसमें हवन करने वाले व्यक्ति को इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, माने वहां पर स्थूल भोग की जरूरत नहीं, वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां सूक्ष्म भोग से सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस स्वर्ग के अनंत को वो प्राप्त कर सकता है। इसका बड़ा सुंदर उसके प्रति विवेचन किया, और यमराज ने फिर पूछा कि अच्छा मैंने तो बता दिया है, तुमको समझ में आया कि नहीं। तो नचिकेता कहने लगा, आज और विचार करूंगा और कल बताऊंगा कि समझ में आया कि नहीं, कितना याद रहा। आप भी सोचेगा कल तक कितना याद रहता है, और नहीं रहता है तो नचिकेता जो बताएगा उसको स्मरण कीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग कल आने वाला है। आज की जो विशेष सूचना है आपको प्रतिदिन यहां से प्राप्त हो ही रही है। जेबी नगर में चल रहा जो चतुर्दशी दिवसीय संत सम्मेलन है, ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में, उस सम्मेलन की आज पूर्णाहुति है, समापन है, अभी 12 बजे समापन हो जाएगा। बंबई में जितने भी संत पुरुष संन्यासी महात्मा विद्वान विराजमान रहते हैं, सभी के सभी संतों का आज वहां पर आगमन होगा, तो सभी संतों का दर्शन लाभ होगा, विशेष संतों के प्रवचनों का श्रवण लाभ भी हमें प्राप्त होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनको सुविधा बने अधिक से अधिक वहां लोग आप लोग पधारे, और उसी के बाद फिर महाप्रसाद आदि की वहां सब व्यवस्था है तो प्राप्त करके इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णावती में आप जरूर वहां पर भाग लें, ऐसा निवेदन है। अभी इसीलिए आज यहां का स्वाध्याय भी बंद रखा गया है, क्योंकि स्वाध्याय करके जाएंगे तो संत दर्शन और महाप्रसाद तो फिर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रवण का लाभ से वंचित हो जाते, इसीलिए आज का स्वाध्याय भी यहां पर नहीं रखा गया है। आप अभी से अपनी तैयारी करें और जेबी नगर पहुंच सकते हैं, अवश्य आना चाहिए। इसी निवेदन के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।